युग अब मान्या के मामले में किसी तरह की रियायत नहीं बरतना चाहता था। वो सीधा उसे मार देने के मकसद से राणा मेंशन में आया था। वहीं मान्या की केयर गिवर, जो कि उसकी भांजी थी, वो मान्या को समझा रही थी कि युग को उस पर शक हो गया है। ऐसे में वो उसे लेकर किसी तरह का रिस्क ना ले। यही सही वक्त था जब उसे वहां से भाग जाना चाहिए था। मान्या पहले प्रतिभा की बात मानने से मना कर रही थी, लेकिन जब युग की गाड़ी वहां पहुंची तब मान्या के पास हाँ कहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वहां से बाहर निकालने के लिए प्रतिभा ने मान्या के पेट में हल्का सा चाकू से घाव किया और अस्पताल ले जाने के बहाने उसे लेकर निकलने लगी। इस बीच युग वहां पर पहुंच गया था। प्रतिभा की मदद के लिए अलीशा वहां पर थी। अलीशा को मान्या की पूरी सच्चाई पता थी, लेकिन उसे यही लगता था कि मान्या पागल है और ऐसे में उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। युग ने अलीशा को डांटकर वहां से भगा दिया था, लेकिन जैसे ही अलीशा वहां से गई, मान्या ने युग के सीने पर चाकू से वार कर दिया था। वो अपनी सेफ्टी के लिए चाकू साथ में लेकर आई थी। मान्या के हाथ में काफी बड़ा एक शार्प नाइफ था, जो प्रतिभा तक नहीं जानती थी कि उसके पास कहां से आया। युग के सीने पर एक बार वार करने के बाद मान्या ने फिर से उसे युग के सीने में घोंपना चाहा, लेकिन युग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इस वक्त उसकी आंखें बेहद लाल हो रखी थीं। ठीक है, फिर आज दोनों साथ में मरते हैं, युग ने धीमी और ठंडी आवाज में कहा। बोलते वक्त उसके मुंह से खून निकलने लगा था, जो साफ जाहिर कर रहा था कि मान्या के हमले ने उसे काफी चोट पहुंचाई है। इससे पहले कि प्रतिभा, युग या मान्या में से किसी को रोक पाती, युग ने मान्या के हाथ को कसकर पकड़कर मरोड़ा और चाकू सीधा उसके सीने में घोंप दिया था। मान्या के हाथ से पकड़ ढीली होने लगी थी। युग ने एक बार फिर से उस पर वार करना चाहा, तो मान्या ने खुद को बचाने के लिए युग के जख्मों पर हाथ रखकर दबाना शुरू कर दिया था। मान्या ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। उसका हाथ कांपने लगा था, लेकिन फिर भी उसने चाकू को नीचे नहीं गिराया। सही सही कहा तुमने, दोनों साथ में खत्म होते हैं, लेकिन मेरा एक सपना अधूरा रह गया। जिस तरह तुमने मेरी बेटी को ढाल बनाया था, उसी तरह मुझे भी तुम्हारी बेटी को ढाल बनाकर उसे मारना था। मान्या की आंखों में आंसू थे और वो टूटे फूटे शब्दों में बोल रही थी। याशी का जिक्र आते ही युग जोर से चिल्लाया और उसने पूरा जोर लगाकर मान्या के पेट में दूसरा वार कर ही दिया था। मान्या भी दर्द के मारे जोर से चिल्लाई। वहीं अलीशा जब ऊपर थी और उसने उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनी, तो वो डर के मारे कांपने लगी थी। चाचू, चाचू ने उसे मार दिया, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, अलीशा ने आंखें बंद करके कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अलीशा की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाहर जाकर देख सके कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आया। वो हैरत भरे लहजे में बोली, लेकिन चाचू क्यों चिल्लाए थे? अलीशा जल्दी से उठकर भाग कर बाहर आई। उसने देखा मान्या और युग दोनों एक दूसरे के साथ जद्दोजहद कर रहे थे। प्रतिभा पूरी कोशिश कर रही थी कि युग को पीछे धकेल दे। युग पागलों की तरह उसके अंदर चाकू घूम कर उसे घुमा रहा था, ताकि मान्या की मौत को जितना दर्दनाक बनाया जा सके वो बनाए। अलीशा अपनी जगह पर चमसी गई थी। उस वक्त घर पर अलीशा और अलीजा के अलावा और कोई बड़ा नहीं था। अलीजा भी अपने कमरे से बाहर आई और नीचे हो रहे खून खराबे को देखकर जल्दी से दौड़कर नीचे जाने लगी। नीचे दौड़कर जाते हुए अलीजा ने जोर से चिल्लाकर अलीशा से कहा, जल्दी नीचे आओ, गाड़ी ड्राइव करो, चाचू इंजर्ड है, हमें उन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। इसी के साथ अलीशा को होश आया और वो भी नीचे आने लगी। योग और मान्या की जो हालत थी, उसे देखकर अलीशा खुद ब खुद समझ गई थी कि वहां क्या हुआ होगा। उसने प्रतिभा की तरफ घूर कर देखा, जो युग के जख्म को दबा रही थी, जबकि मान्या युग का हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। अलीशा ने प्रतिभा के बाल पकड़कर खींचे और उसे युग से अलग कर दिया था। वो उसके गाल पर थप्पड़ लगाकर सर्द आवाज में बोली, अगर मुझे अपने चाचू को बचाने की जल्दी नहीं होती तो आई स्वेर तकलीफ और दर्द देना क्या होता है तुम्हें अच्छे से समझाती। अलीजा ने चिल्लाकर सिक्योरिटी को बुलाया और उसने प्रतिभा को उनके हवाले कर दिया था। वहीं उसकी नजर योग और मान्या पर गई तो दोनों ही जमीन पर गिरे हुए अधखुली आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। अलीजा ने एक झटके में मान्या के पेट से चाकू निकाला और बिना सोचे समझे उसका गला काट दिया था। इसी के साथ मान्या की सांसें वहीं पर थम गई थी। वहीं अलीशा ये सब देखकर पूरी तरह सदमे में आ गई थी। तुमने उसे मार दिया, अलीशा टकते हुए बोली। अलीजा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और ठंडे लहजे में कहा, अगर तुमने अपना इमोशनल ड्रामा फिर से स्टार्ट किया और मेरी हेल्प नहीं की, तो तुम्हें मारने से पहले भी मुझे कोई झिझक नहीं होगी। अलीशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाती, अलीजा ने बिना किसी भाव के कहा, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, जितना फास्ट ड्राइव कर सकती हो करो, मैं एम्बुलेंस आने का वेट नहीं कर सकती, हमें चाचू को अस्पताल लेकर जाना होगा, वो बुरी तरह इंजर्ड हैं। अलीशा ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया और दौड़कर पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगी।
वहीं अलीजा ने सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से युग को उठाया और अगले कुछ मिनट में वो युग के साथ गाड़ी की बैक सीट पर थी। उसने युग के घाव को कसकर दबा रखा था ताकि खून न बहे, पर जिस तरह से मान्या ने युग पर वार किया था, पहले ही उसका काफी खून बह चुका था। वो बेहोश नहीं हुआ था, बस उसकी सांसें धीमी हो गई थी और अधखुली आंखों से वो अलीजा की तरफ देख रहा था। डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा, अलीजा ने भारी आवाज में कहा। वो काफी स्ट्रांग थी, लेकिन युग को उस तरह देखकर उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि वो सबसे ज्यादा युग के करीब थी। अलीजा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया। उसकी आंखों से आंसू का कतरा बहकर युग के चेहरे पर गिर गया था। युग ने अपना हाथ उठाकर अलीजा के हाथ पर रखा। अलीजा ने तुरंत उसकी तरफ देखा तो युग ने बेहद धीमी आवाज में कहा, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। अलीजा ने हल्का मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। ड्राइव करते हुए अलीशा ने पहले ही मनन को कॉल कर दिया था। वहीं युग जब घर से बाहर निकला, उस वक्त तारा गुस्से में अपने कमरे में आई थी। उसने यही सोचा था कि वो पगफिरे की रस्म के लिए नहीं जाने वाली है। ध्रुव अच्छे से जानता था कि तारा उसके कमरे में ही है, इसलिए वो बिना किसी काम के वहां नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ जरूरी फाइल्स लेने के लिए उसे कमरे में आना पड़ा। जैसे ही तारा ने ध्रुव को देखा, वो जल्दी से उठकर तेज आवाज में बोली, मैं उनके घर नहीं जाने वाली हूँ, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन मेरा है और मैं जरूर जाऊंगा, ध्रुव ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। तुम मुझे अपनी वाइफ नहीं मानते हो, फिर उनके साथ तुम्हारा रिश्ता कैसे हो सकता है, ध्रुव ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। ध्रुव ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसका ये बर्ताव तारा को और चिढ़ा रहा था। तारा ध्रुव से बहस करने के लिए उसके पास आ रही थी, जो अलमारी के पास खड़ा कुछ फाइलों को टटोल रहा था। उसने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा ही था कि तभी ध्रुव का मोबाइल बजा। उसने कॉल रिसीव करके स्पीकर ऑन कर दिया था। ध्रुव, वो, सामने से अलीजा की आवाज आई, लेकिन वो बोलते हुए रुक गई थी। इतना नर्वस क्यों हो रही हो, किसी ऐसे को मार दिया क्या जो इनोसेंट था? देखो, मैं हेल्प नहीं करने वाला हूँ, ध्रुव ने आईज रोल करके कहा, जिस पर तारा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी।
इन लोगों के लिए इंसानों की जान की कीमत इतनी सस्ती क्यों है, जो किसी को मारकर इतनी आसानी से बात कर सकते हैं, तारा ने तंज भरे लहजे में कहा, जिस पर ध्रुव उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। मैंने किसी को नहीं मारा, तुम बस हॉस्पिटल आ जाओ, उस पागल मान्या ने चाचू पर हमला कर दिया था, वो बुरी तरह घायल है, प्लीज जल्दी आ जाओ, अलीजा ने कहा और फिर रोने लगी थी। ध्रुव तो क्या, अलीशा ने भी पहली बार अलीजा को रोते हुए देखा होगा। अलीजा अब तक हिम्मत बनाए हुए थी, लेकिन जैसे ही युग बेहोश हुआ, उसकी बची कुची हिम्मत भी टूट गई थी। ध्रुव एक पल के लिए जैसे वहीं पर जम गया हो। अचानक उसने सारी फाइल्स को वहीं पर छोड़ा और भागकर जाने लगा। सिर्फ वो ही नहीं, तारा भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। डैग इतनी केयरलेस कैसे हो सकते हैं, वो स्ट्रांग है, फिर कोई पागल औरत उन पर हमला कैसे कर सकती है, तारा ने उसके पीछे भागते हुए कहा। वो मेरे डैड हैं, उन्हें डैड कहना बंद करो, मुझे कैसे पता होगा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ, ध्रुव ने चिढ़कर जवाब दिया। अर्ली मॉर्निंग होने की वजह से कृषा अभी तक उठी नहीं थी। जबकि याशी ने उन दोनों को साथ में भागते हुए देखा तो वो हैरानी से उन्हें देख रही थी। उसे कुछ पूछने का मौका नहीं मिला और ध्रुव को भी किसी चीज का ख्याल नहीं था। वो जल्दी से जाकर दौड़कर गाड़ी में बैठा। तारा उससे कुछ कदम ही दूरी पर थी। तारा को लगा कि उसे ध्रुव को रोकने के लिए कहना होगा, लेकिन ध्रुव ने गाड़ी स्टार्ट की और तारा के लिए दरवाज़ा भी खोल दिया था। वो जल्दी से आकर उसके पास बैठ गई थी। ध्रुव की गाड़ी रोड पर इस वक्त किसी स्पोर्ट्स कार की तरह हवा से बातें करते हुए चल रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा था। कुछ ही देर में वे अस्पताल पहुंच चुके थे। युग को पहले ही ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। जैसे ही ध्रुव और तारा वहां पहुंचे, अलीजा ने ध्रुव को देखते ही उसे गले लगा लिया था। कैसे हुआ ये सब, और मान्या, वो तो पागल है, क्या वो ठीक हो चुकी थी, कहाँ है वो अब, ध्रुव के दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे। अलीजा ने सुबकते हुए नामे सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने चाचू और मान्या के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। मैं बाहर आई तो मान्या अपनी केयरगिवर प्रतिभा के साथ मिलकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। वो मर चुकी है, और चाचू की हालत, उसकी बात पूरी होने से पहले ही ध्रुव ने उसे काटते हुए सख्त आवाज में कहा, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, ओके। अलीशा भी उनके पास में खड़ी थी। वो रोते हुए बोली, सब मेरी गलती है, मुझे सब यही कहते हैं कि आसानी से किसी पर ट्रस्ट मत किया करो, पर मुझे लगा वो सच में घायल है और मैं उसकी हेल्प करने के लिए उसे नीचे तक लेकर आई थी। इस बीच चाचू वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने मुझे अपने कमरे में भेज दिया था। अगर मैं वहां पर रुकी रहती तो वो चाचू पर हमला नहीं कर पाती। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, इसके लिए खुद को ब्लेम मत करो, तारा ने उसके पास आकर सहला कर कहा। वे लोग बिल्कुल शांत थे, बस इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। अगले दो घंटे बाद डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली। युग की हेल्थ अपडेट देते हुए डॉक्टर ने कहा, वो खतरे से बाहर है, लेकिन खून काफी बह चुका है और ऊपर से जिस तरह से उन पर हमला किया गया था, ऑर्गन्स काफी हद तक डैमेज हो चुके हैं और रिकवर होने में टाइम लगेगा। फिलहाल सर्जरी के बाद 24 घंटे में होश आ जाएगा। डॉक्टर अपना काम करके जा चुके थे और युग को ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। इस बीच कृषा की नींद टूटी
तो घर पूरी तरह से खाली था। कल रात ड्रिंक करने की वजह से उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। युग भी कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। मान्या की लाश अभी भी राणा मेंशन के लिविंग एरिया में थी। ध्रुव ने वीर को कॉल करके वहां सब कुछ क्लीन करने के लिए कहा था। जब वो वहां पहुंचा तो मान्या की लाश अभी भी वहीं पड़ी हुई थी, लेकिन प्रतिभा मौका देखकर वहां से भाग चुकी थी।